एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। स्वागत, आज हम एक ऐसी शख्सियत की जिंदगी और उनके दौर पर बात करने वाले हैं जिनका असर मतलब दुनिया भर में महसूस किया जाता है। पोप फ्रांसिस, उनकी आत्मकथा आई है लाइफ माई स्टोरी थ्रू हिस्ट्री।
जी हाँ, और इसे उन्होंने फैबियो मार्चे से रगोना के साथ बातचीत में तैयार किया है।
हाँ, तो ये किताब सिर्फ पोप फ्रांसिस की कहानी नहीं है, है ना?
बिल्कुल नहीं, ये जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो की कहानी है, एक आम इंसान जो अर्जेंटीना के, आप कह सकती हैं, एक सामान्य इतालवी प्रवासी परिवार से निकला और आज कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च नेता है। उनकी कहानी असल में 20वीं और 21वीं सदी की जो बड़ी उथल पुथल वाली घटनाएं है ना, उनके साथ साथ चलती है।
अर्जेंटीना से पोप के पद तक पहुँचना, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वो अमेरिका और जिसे हम ग्लोबल साउथ कहते हैं,
जी,
वहां से आने वाले पहले पोप हैं। तो आज उनकी कहानी सुनना क्यों जरूरी लगता है?
देखिए, उनकी कहानी ये दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का जीवन, उसका निजी इतिहास और दुनिया का इतिहास, ये आपस में जुड़े हुए हैं, गुंथे हुए हैं।
अच्छा।
और ये दिखाती है कि कैसे गहरा विश्वास बड़ी बड़ी मुश्किलों और उथल पुथल के बीच भी बना रह सकता है। उनकी यात्रा देखिए, गंभीर बीमारी हुई अर्जेंटीना में, वो राजनीतिक हिंसा का भयानक दौर था।
हाँ, वो डर्टी वॉर।
बिल्कुल, फिर व्यक्तिगत नाकामी भी आई और फिर अचानक से अप्रत्याशित ऊंचाइयां भी मिली। तो ये सब हमें मानवीय लचीलेपन के बारे में और शायद थोड़ी उम्मीद के बारे में भी कुछ सिखाता है।
और हाशिए पर जो लोग हैं उनकी आवाज बनने की कहानी भी है ये।
जी हाँ, ये बहुत जरूरी पहलू है उनकी कहानी का।
तो चलिए उनके जीवन के इस लंबे दिलचस्प सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। शुरुआत उनके बचपन से करते हैं। ब्यूनस आयर्स में जन्म हुआ। माता पिता इटली से आए अप्रवासी थे, पिता अकाउंटेंट, माँ गृहिणी। 5 भाई बहनों में वो सबसे बड़े थे। कैसा माहौल था घर का?
घर का माहौल, जैसे मैंने कहा, साधारण था, लेकिन उसमें एक गहराई थी। परिवार में मेहनत, कम खर्च करना और कैथोलिक आस्था, इन मूल्यों की जड़ें बहुत गहरी थीं।
अच्छा।
उनकी दादी रोजा वसालो, उनका जिक्र वो अक्सर करते हैं, उनका उन पर बहुत खास असर रहा। उन्होंने ही उन्हें इटली की वो पिडमोंतेज बोली सिखाई,
अरे वाह,
अपनी जड़ों से जोड़ा, कहानियां सुनाई और एक बहुत ही व्यावहारिक, जिंदा किस्म का विश्वास दिया, किताबी नहीं। और उस वक्त देखिए, दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध का माहौल था, उसकी चिंताएं अर्जेंटीना तक भी पहुंचती थीं। तो शायद कम उम्र में ही उन्हें ये संघर्ष और तकलीफ का एहसास कहीं ना कहीं हुआ होगा।
और फिर वो 21 साल की उम्र वाली घटना, जब उन्हें वो गंभीर निमोनिया हुआ था, सुना है वो उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ था।
बिल्कुल, वो एक निर्णायक मोड़ था, उनके दाहिने फेफड़े का एक हिस्सा निकालना पड़ा था।
ओहो,
मौत के इतने करीब पहुंचकर जाहिर है उन्हें जिंदगी की नाजुकता का गहरा एहसास हुआ, और इस अनुभव ने न सिर्फ एक आध्यात्मिक संकट पैदा किया, बल्कि ठीक होने के बाद पादरी बनने की उनकी जो इच्छा थी उसे और मजबूत कर दिया।
लेकिन ये दिलचस्प है कि पादरी बनने से पहले वो कुछ और बनना चाहते थे, कसाई बनने का सपना।
हाँ, ये वो खुद बताते हैं, कसाई बनना चाहते थे, केमिकल लैब में भी काम किया, यहाँ तक कि कुछ समय के लिए एक नाइट क्लब में बाउंसर का काम भी किया।
क्या बात है, तो मतलब रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं था।
बिल्कुल नहीं, पादरी बनने का फैसला एकदम अचानक या शुरू से तय नहीं था।
तो ये रास्ता फिर जेजुइट बनने की तरफ कैसे मुड़ा? उनकी पढ़ाई लिखाई, शुरुआती ट्रेनिंग, वो सब कैसा रहा?
हाँ, तो 1958 में, मतलब करीब 22 साल की उम्र में, उन्होंने जेजुइट नोविशिएट ज्वाइन किया। अब जेजुइट परंपरा में बौद्धिक और आध्यात्मिक दोनों तरह का प्रशिक्षण बहुत कठोर होता है। उन्होंने चिली जाकर मानविकी पढ़ी, फिर दर्शनशास्त्र में डिग्री ली, उसके बाद कुछ समय साहित्य और मनोविज्ञान भी पढ़ाया।
अच्छा।
और इसी दौरान चर्च में एक बहुत बड़ी घटना हो रही थी, वैटिकन द्वितीय परिषद, 1962 से 1965 तक।
हाँ, वो सुरहारों का दौर।
जी बिल्कुल, चर्च को आधुनिक दुनिया के लिए खुलने की कोशिश थी वो, और इसका युवा बर्गोग्लियो पर बहुत गहरा असर पड़ा। फिर 1969 में वो पादरी बने।
लेकिन वो कहते हैं कि उनकी असली शिक्षा कहीं और हुई।
हाँ, वो कहते हैं उनकी असली शिक्षा हुई अर्जेंटीना की मजदूर बस्तियों में, परगनों में, जहाँ उन्होंने गरीबों के रोजमर्रा के संघर्ष और उनके अटूट विश्वास को बिल्कुल करीब से देखा।
अच्छा।
और यहीं से वो जो हाशिए की बात करते हैं ना, उन लोगों के प्रति उनकी जो आजीवन प्रतिबद्धता है, उसकी नींव यहीं पड़ी।
इसके बाद उनकी जीवन में तरक्की भी आई, लेकिन शायद सबसे मुश्किल दौर भी आया, खासकर जब वो अर्जेंटीना में जेसुइट्स के प्रांतीय सुपीलियर बने, वो भी बहुत कम उम्र में।
जी हाँ, वो बहुत ही मुश्किल, बहुत ही दर्दनाक दौर था अर्जेंटीना के लिए। वो सिर्फ 36 साल के थे जब 1973 में उन्हें ये जिम्मेदारी मिली।
सोचिए जरा।
और फिर 1976 से 1983 तक वो सैन्य तानाशाही का क्रूर दौर चला, डर्टी वॉर। हजारों लोग गायब कर दिए गए, मार दिए गए, खासकर वो लोग जो सरकार के आलोचक थे या वामपंथी विचारधारा के माने जाते थे। तो बर्गोलियो पर उस समय जबरदस्त दबाव था। एक तरफ तो जेजुइट समुदाय खुद अंदर से बंटा हुआ था और दूसरी तरफ अपने लोगों को इस भयानक दमन से बचाना भी था।
ये तो बहुत कठिन स्थिति रही होगी।
बहुत। वो खुद मानते हैं कि उस समय उनकी जो लीडरशिप स्टाइल थी वो थोड़ी सत्तावादी या कहें अथॉरिटेरियन थी, लेकिन उन्होंने गुप्त रूप से बहुत से लोगों की मदद की। उन्हें जेजुइट घरों में छुपाया, कुछ को देश से बाहर निकालने में मदद की।
लेकिन उन पर कुछ आरोप भी लगे थे, दो जेजुइट पादरियों के मामले में।
हाँ, वो योरियो और जैलिक्स वाला मामला। उन पर आरोप लगा कि उनके अपहरण में वो कहीं ना कहीं शामिल थे या उन्होंने पर्याप्त कोशिश नहीं की। वो इन आरोपों का हमेशा खंडन करते रहे हैं, लेकिन ये घटना उनके लिए बहुत गहरे दुख का कारण बनी। वो मानते हैं कि ये दौर उनके लिए एक तरह की आग की परीक्षा जैसा था।
इस भारी उथल पुथल और मुश्किल जिम्मेदारी के बाद किताब में एक आंतरिक निर्वासन जैसी स्थिति का भी जिक्र आता है, कॉर्डोबा भेजे जाने का।
जी, प्रांतीय सुपीरियर का कार्यकाल खत्म होने के कुछ साल बाद 1990 से 92 तक उन्हें कॉर्डोबा भेज दिया गया। ये उनके लिए एक तरह का आध्यात्मिक रेगिस्तान जैसा था।
मतलब
शक्ति से दूर, प्रभाव से दूर, काफी अकेलापन। और शायद यही उन्हें अपनी पिछली गलतियों पर, खासकर अपने नेतृत्व के तरीके पर गहराई से सोचने का मौका मिला। वो इसे अपनी परिपक्वता के लिए बहुत जरूरी मानते हैं। कहते हैं कि यही उन्होंने विनम्रता सीखी। ये समय उन्होंने प्रार्थना, अध्ययन और बहुत सादगी में बिताया।
और फिर इस निर्वासन से वापसी हुई, ब्यूनस आयर्स के आर्कबिशप बनना और आखिर में पोप चुने जाना, ये कैसे हुआ?
हाँ, वापसी के बाद उनका कद धीरे धीरे बढ़ने लगा। 1992 में ब्यूनस आयर्स के सहायक बिशप बने, फिर 1998 में आर्कबिशप।
और इसी दौरान उन्हें झुग्गियों का बिशप कहा जाने लगा।
जी बिल्कुल, वो अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते थे, महंगे महलनुमा आवास की जगह एक साधारण अपार्टमेंट में रहते थे और अपना काफी समय शहर की गरीब बस्तियों में लोगों के बीच बिताते थे। वो सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक बहुत मुखर, एक ताकतवर आवाज बन गए। फिर 2001 में उन्हें कार्डिनल बनाया गया।
और फिर 2013 में वो बड़ा पलाया, पोप बेनेडिक्ट 16 का इस्तीफा। और
हाँ, और फिर दुनिया भर के कार्डिनल्स ने कॉन्क्लेव में उन्हें पोप चुना, जो कई लोगों के लिए और शायद खुद उनके लिए भी काफी अप्रत्याशित था।
उन्होंने अपना नाम फ्रांसिस क्यों चुना?
उन्होंने ये नाम असीसी के संत फ्रांसिस के सम्मान में चुना। संत फ्रांसिस गरीबी, शांति और प्रकृति प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं, तो ये नाम चुनना ही उनके इरादों का एक संकेत था।
उनके पोप बनने के बाद के सालों के बारे में किताब क्या बताती है? उनकी मुख्य प्राथमिकताएं क्या रही हैं और चुनौतियां?
देखिए, वो अपने कार्यकाल को वेटिकन II के जो सुधार थे ना, उन्हीं को आगे बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखते हैं।
अच्छा।
उनकी प्राथमिकताएं काफी साफ हैं। पहला, एक ऐसा चर्च जो गरीबों के करीब हो, गरीबों के लिए एक गरीब चर्च। दूसरा, दया और मुलाकात की संस्कृति को बढ़ावा देना। तीसरा, और ये बहुत बड़ी चुनौती है, पादरी वर्ग द्वारा बच्चों के यौन शोषण यानी क्लेरिकल अब्यूज के संकट से निपटना।
हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा रहा।
जी, ये चर्च के विश्वास को बहुत चोट पहुंचाई है। इससे निपटना उनके लिए लगातार एक बड़ी और मुश्किल चुनौती रही है। फिर वेटिकन के वित्त में पारदर्शिता लाना, उसमें सुधार करना और पर्यावरण की रक्षा और सामाजिक न्याय को जोड़ना, जैसा उन्होंने अपने दस्तावेज लाउदातो सी में किया है। किताब में वो दुनिया भर के लोगों से मिलने की खुशी का भी जिक्र करते हैं, लेकिन साथ ही पोप के पद के साथ आने वाले गहरे अकेलेपन को भी मानते हैं।
ये दिलचस्प है।
हाँ, और वो अपनी बढ़ती उम्र, अपनी सीमाओं को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन भविष्य की ओर एक शांत भरोसे के साथ देखते हैं। एक और बात, उन्होंने अपनी वसीयत में कहा है कि उन्हें वेटिकन की बजाय रोम के सेंट मेरी मेजर बेसिलिका में दफनाया जाए।
अच्छा, क्यों?
ये शायद रोम के बिशप के तौर पर उनकी पहचान और मां मरियम के प्रति उनकी जो गहरी श्रद्धा है, उसे दिखाता है।
इन सब अनुभवों से, खासकर वो अर्जेंटीना वाला मुश्किल दौर, फिर कॉर्डोबा का निर्वासन, इन सब से उनके अंदर एक खास सोच, कुछ गहरे मूल्य बने होंगे। वो क्या है? उनके काम और जीवन का मूल दर्शन क्या है?
अगर एक शब्द में कहना हो तो वो है दया, मिसेरिकॉर्डिया। उनके लिए ये ईश्वर का सबसे बड़ा गुण है, आप कह सकती हैं लगभग ईश्वर का दूसरा नाम,
दया।
जी, और इसी से उनकी पूरी दृष्टि निकलती है कि चर्च कोई किला नहीं है जहां सिर्फ सिद्ध या पवित्र लोग रहें, बल्कि ये घायलों के लिए एक फील्ड अस्पताल है।
फील्ड अस्पताल,
ये बहुत शक्तिशाली छवि है,
है ना?
इसका मिशन है हाशिए पर जाना, चाहे वो भौगोलिक हाशिए हों जैसे झुग्गियां, या अस्तित्वगत हाशिए जैसे दुखी, अकेले, बहिष्कृत लोग, और उनके घावों पर मरहम लगाना। ये दर्शन बहुत ठोस है, मतलब ये किताबी नहीं है। ये मानता है कि ईश्वर सिर्फ सिद्धांतों में नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी की सच्चाइयों में मिलता है, खासकर गरीबों और दुखियारों के जीवन में।
वो अक्सर मुलाकात की संस्कृति या कल्चर ऑफ एनकाउंटर की भी बात करते हैं, इसका क्या मतलब है उनके लिए?
इसका सीधा सा मतलब है दीवारें मत बनाओ, पुल बनाओ। लोगों से मिलो, सच में मिलो, उनकी आंखों में देखो, उनकी कहानियां सुनो, उनके साथ चलो, दूर से खड़े होकर उन पर फैसला मत सुनाओ। ये उनके संवाद पर जोर को दिखाता है, और इसके साथ जुड़ा है जेसुइट परंपरा का एक और बहुत जरूरी सिद्धांत, विवेक, डिसर्नमेंट।
विवेक,
हाँ, मतलब ये समझना कि दुनिया सीधी सपाट काली सफेद नहीं होती, इसमें बहुत सारे ग्रे एरियाज होते हैं। ईश्वर की इच्छा को समझने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, आत्मा की आवाज सुननी पड़ती है। ये जटिलता और इंसानी कमजोरी के लिए जगह बनाता है।
अच्छा,
शायद इसीलिए वो युवाओं को अक्सर कहते हैं हागान लियो, यानी गड़बड़ करो, हंगामा करो, मतलब जो चल रहा है उसे वैसे ही मत चलने दो, सवाल उठाओ, चुनौती दो।
ये तो काफी अलग बात है जो आमतौर पर धर्मगुरुओं से सुनने को मिलती है।
हाँ, बिल्कुल।
और कौन सी चीजें हैं जो उन्हें लगातार प्रेरणा देती हैं, उन्हें आगे बढ़ाती हैं?
मुझे लगता है तीन मुख्य प्रेरणाएं साफ दिखती हैं। पहली और सबसे गहरी वो है ईसा मसीह के साथ उनका बहुत ही निजी गहरा रिश्ता। ये कोई सिर्फ रस्म अदायगी वाला विश्वास नहीं है, ये एक जीता जागता अनुभव है उनके लिए। दूसरी, गरीबों के प्रति एक जुनून जो ब्यूनस आयर्स की झुग्गियों में काम करते हुए और भी पक्का हुआ। उनके लिए सामाजिक न्याय कोई अलग से जोड़ने वाली चीज नहीं है, ये उनके विश्वास का, सुसमाचार का एक अंदरूनी हिस्सा है।
अच्छा।
और तीसरी, चर्च में सुधार की इच्छा। वो वेटिकन II के वादों को पूरा करना चाहते हैं, वो लिपिकवाद यानी क्लेरिकलिज्म को खत्म करना चाहते हैं।
क्लेरिकलिज्म मतलब?
मतलब पादरी वर्ग का जो एक अनावश्यक दबदबा बन जाता है, आम लोगों से एक दूरी बन जाती है, खुद को ज्यादा महत्वपूर्ण समझने की प्रवृत्ति, उसे वो खत्म करना चाहते हैं। वो एक ज्यादा सिनोडल चर्च बनाना चाहते हैं।
सिनोडल?
हाँ, सिनोडल मतलब साथ मिलकर चलने वाला, जिसमें सबकी सुनी जाए, सब मिलकर फैसले लें, और जाहिर है वो दुर्व्यवहार के संकट को पूरी गंभीरता से लेना चाहते हैं।
जीवन में मुश्किल हालात तो आते ही रहते हैं, उनका सामना करने का उनका तरीका क्या रहा है, क्या पता चलता है किताब से?
इसमें भी मुझे लगता है तीन बातें खास हैं। पहला, प्रार्थना और समर्पण। जब मुश्किल वक्त आता है, उनका पहला कदम प्रार्थना और ईश्वर पर भरोसा होता है। लेकिन दूसरा, व्यवहारिकता और कर्म। प्रार्थना उन्हें हाथ पर हाथ रखकर बैठने नहीं देती, वो यथार्थवादी हैं, वो समस्याओं का हल ढूंढते हैं, जैसे वेटिकन बैंक सुधारों में दिखा। वो जानकारी लेते हैं, सलाहकारों से बात करते हैं, और फिर फैसले लेते हैं, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो।
मतलब सोचते भी हैं और करते भी हैं।
बिल्कुल। और तीसरा, धैर्य और दूरगामी सोच। वो अक्सर कहते हैं समय स्थान से बड़ा है।
इसका क्या मतलब है?
नतीजों के पीछे नहीं भागते, वो ऐसी प्रक्रियाएं शुरू करने में विश्वास रखते हैं जिनका असर लंबे समय तक रहे, भले ही नतीजा तुरंत ना दिखे। शायद कॉर्डोबा के उस निर्वासन वाले दौर ने उन्हें ये धैर्य सिखाया।
किताब में उन तीन खास पलों या दौरों का भी जिक्र है जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी, क्या आप उनके बारे में बता सकती हैं?
जी, पहला तो निश्चित रूप से 1957 की वो फेफड़ों की बीमारी है। 21 साल की उम्र में मौत के इतने करीब जाना, ये बहुत गहरा अनुभव था।
हाँ।
इसने उन्हें शरीर की नाजुकता का एहसास कराया, इंसान की हमदर्दी का भी। वो एक नर्स की कहानी बताते हैं जिसे लगा कि डॉक्टर ने दवा की जो डोज बताई है वो कम है, और उसने अपनी जिम्मेदारी पर डोज बढ़ा दी जिससे शायद उनकी जान बची।
अरे,
तो मानवीय करुणा का महत्व और ईश्वर पर पूरी तरह निर्भर होना, ये सब उन्होंने उस अनुभव से सीखा और इसी ने पादरी बनने के उनके इरादे को बिल्कुल पक्का कर दिया।
दूसरा शायद वो अर्जेंटीना वाला मुश्किल दौर रहा होगा जब वो जेसुइट प्रांतीय थे।
बिल्कुल, डर्टी वॉर के दौरान 1973-79 जेसुइट प्रांतीय का नेतृत्व करना, वो राजनीतिक हिंसा, वो सैन्य दमन और खुद जेसुइट समुदाय के अंदर गहरे मतभेद, इन सबके बीच नेतृत्व करना उनके लिए एक आग की परीक्षा थी। उन्हें लोगों को बचाने के लिए बहुत मुश्किल फैसले लेने पड़े, लेकिन वो इस दौर में अपनी सत्तावादी शैली की कमियों को भी मानते हैं और यूरियो ज़ेलिक्स प्रकरण से जुड़े दर्द को भी स्वीकार करते हैं। ये एक तकलीफदेह लेकिन सीखने वाली नाकामी थी जिसने उनके नेतृत्व करने के तरीके को गहराई से बदला, उन्हें अपनी सीमाओं का एहसास कराया।
और तीसरा बड़ा मोड़,
तीसरा है कॉर्डोबा का निर्वासन 1990-92। वो सत्ता और प्रभाव से दूरी, वो अकेलापन, वो एक तरह की आध्यात्मिक वीरानी का समय। ये उनके लिए एक जरूरी शुद्धि का समय था। उन्हें अपने अभिमान का, अपनी महत्वाकांक्षाओं का, अपनी पिछली गलतियों का सामना करने का मौका मिला। उन्होंने समर्पण और ईश्वर पर पूरी तरह निर्भर रहना सीखा। आत्मा की इस अंधेरी रात ने उन्हें वो विनम्रता और दूसरों पर निर्भरता सिखाई जो बाद में उनके बिशप और पोप बनने के कार्यकाल की पहचान बनी। वो कॉर्डोबा से एक बदले हुए इंसान बनकर निकले, ऐसा कह सकते हैं।
तो पोप फ्रांसिस की इस पूरी कहानी से हम जैसे आम लोग अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं, क्या सबक मिलते हैं?
कई गहरे सबक हैं। शायद सबसे पहली और अहम बात यह है कि नाकामी या असफलता वो अंत नहीं है, बल्कि वो हमें कुछ सिखा सकती है, वो रचनात्मक हो सकती है। उनकी वो प्रांतीय सुपीरियर के तौर पर की गई गलतियां या कॉर्डोबा का वो अकेलापन, वही वो जमीन बनी जिससे बाद में उनकी विनम्रता, उनकी सुनने की क्षमता, उनकी दया की सोच, ये सब विकसित हुआ। ये हमें सिखाता है कि हमारी कमजोरियां, अगर हम उन्हें ईमानदारी से देखें, तो हमारी ताकत बन सकती हैं।
और वो हाशिए वाली बात, समाज के किनारों पर ध्यान देना, ये भी एक सबक है।
हाँ बिल्कुल, हाशिए का महत्व, चाहे वो ब्यूनस आयर्स की झुग्गियों में गरीबों से सीखना हो या अपनी पुरानी बॉस एस्थर बेलेस्ट्रिनो से सीखना हो जो कम्युनिस्ट थीं, ये दिखाता है कि सच्ची समझ और ज्ञान अक्सर सत्ता के गलियारों में नहीं मिलते, वो समाज के अनदेखे कोनों में मिलते हैं।
सही बात है।
ये हमें चुनौती देता है कि हम अपने आराम के दायरे से बाहर निकलें और उन लोगों से सीखें जिनकी आवाज़ें अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। फिर एक और बात, विचारधारा से ज़्यादा संवाद को अहमियत देना, रिश्ते बहस जीतने से ज्यादा जरूरी हैं, और जिंदगी की उलझनों और उसकी अपूर्णता को स्वीकार करना, जटिलता से डरना नहीं, ये जोखिम लेने और प्रक्रिया पर भरोसा करने का संदेश है। ये मानना कि ईश्वर टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से भी सीधा लिख सकता है।
नेतृत्व के बारे में भी उनकी कहानी कुछ खास सिखाती है ना?
जरूर, पहला तो वही सेवक नेतृत्व का मॉडल की लीडरशिप सेवा करने के लिए है, रुतबा दिखाने के लिए नहीं। दूसरा, प्रामाणिकता ही असली अधिकार है। उनकी सादगी, अपनी कमियों को खुलकर मानना, ये दिखाता है कि अधिकार पद से नहीं बल्कि सच्चे और खरे होने से आता है।
ये बहुत अहम है।
तीसरा, एक नेता को सुनना चाहिए। उनका वो सिनोडालिटी पर जोर देना, यानी सबको साथ लेकर चलना और सबकी सुनना, इसी का उदाहरण है। और चौथा, सच्चा बदलाव सिर्फ नियम बदलने से नहीं आता, वो सोच और संस्कृति बदलने से आता है।
अगर इस पूरी बातचीत को हम तीन मुख्य बातों में समेटना चाहें तो वो क्या होंगे, तीन अंतिम निष्कर्ष?
ठीक है, पहली, एक दिल को छूने वाली सीख, या कहिए भावनात्मक अंतर्दृष्टि। निर्वासन और असफलता का जो दर्द है, वही गहरी विनम्रता और दया का बीज बन सकता है, जैसे कॉर्डोबा के अकेलेपन और प्रांतीय सुपीरियर के तौर पर अपनी गलतियों के एहसास ने ही पोप फ्रांसिस की वो घायलों के लिए फील्ड अस्पताल वाली सोच को जन्म दिया। मतलब उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी सबसे कठिन असफलताओं से निकली।
ये बहुत गहरा है। दूसरी बात,
दूसरी, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि या विचारों को झकझोरने वाली बात। चर्च या कोई भी संस्था एक फील्ड अस्पताल है। ये सोच किसी भी संगठन के उद्देश्य पर ही सवाल उठा देती है कि क्या हम सिर्फ अपने लिए मौजूद हैं या उन लोगों के लिए जिन्हें चोट लगी है, जो हाशिए पर हैं। ये दया और बाहरी पहुंच को नियमों और अंदरूनी मामलों पर प्राथमिकता देता है। ये सिर्फ चर्च के लिए नहीं, किसी भी स्कूल, कंपनी या समुदाय के लिए सोचने वाली बात है।
ये बिल्कुल नई तरह से सोचने पर मजबूर करता है और तीसरी
हम सबके लिए एक सबक,
तीसरी हम सबके लिए एक जरूरी या कहिए सार्वभौमिक सबक,
प्रामाणिकता और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना। यही असली ताकत और लोगों से जुड़ने का दरिया है। उनका सादा जीवन, अपनी गलतियों को मानना, ये दिखाता है कि सच्ची शक्ति पद में नहीं, इंसानियत में है। और दूसरों से निकटता, दया और कोमलता के साथ मिलना, शायद यही सबसे जरूरी बात है जो हम उनसे सीख सकते हैं।
वाकई ये एक असाधारण जीवन की कहानी है, जिसमें इतिहास है, विश्वास है, संघर्ष है और इंसानियत के कई रंग घुले मिले हैं। पोप फ्रांसिस की कहानी सिर्फ उनके बारे में नहीं है, ये हम सबके लिए भी एक आईना है, एक निमंत्रण है।
हाँ बिल्कुल, एक निमंत्रण अपनी असफलताओं में भी सीखने का मौका देखने का, अपने आसपास जो हाशिए पर खड़े लोग हैं उन पर ध्यान देने का, और जहाँ बंटवारा है वहाँ बातचीत का रास्ता चुनने का।
और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि हमारी अपनी दुनिया में, हमारे समाज में, हमारे आसपास ये हाशिए कहाँ हैं, और हम आज की इस इतनी बटी हुई दुनिया में बातचीत का रास्ता कैसे चुन सकते हैं।
उनकी कहानी एक और गहरा सवाल भी उठाती है। मुझे लगता है कि जब इतिहास की बड़ी लहरें हमें थपेड़े मार रही हों, जब बाहरी हालात बहुत मुश्किल हों, तो अपने अंदर के विश्वास को, अपनी रूहानी आज़ादी को कैसे बनाए रखा जाए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी सोच सकते हैं।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।